ज्यादा खुलता है।
और तुम
अल्लाह हम सब के लिए मौत तक अपनी तौफीक हमारे साथ कर दे। हाँ, वरना हमारे बस की बात नहीं है। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं, हमारे बस का तो है ही नहीं। वजह इसकी ये है कि नफ्स हमारे साथ है, फिर शैतान हमारे साथ है, फिर माहौल भी है, है नहीं? हाँ, हर एक के साथ उसका अपना शैतान है। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि हर आदमी के साथ उसका शैतान भी पैदा होता है। वो जितना पुराना है उतना शैतान भी पुराना है। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह के नबी, आपके साथ भी है? कहाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन वो मुझ पर ईमान ले आया, वो मुसलमान हो गया है। तो हर एक के साथ उसका अपना शैतान भी है, नफ्स भी है, है नहीं? ये हमारे दुश्मन है, हमारा नफ्स खुद हमारा दुश्मन है। हाँ, इसलिए अल्लाह की तौफीक मांगने की चीज़ है। नियत करो अल्लाह से हम रोज़ाना तौफीक मांगेंगे, है ना? हाँ, ये मांगने की चीज़ है। अल्लाह के नबी ने उसको मांगा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें इसकी तालीम दी है। बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, इसमें अल्लाह की तौफीक भी मांगे। ये मिल गई तो सारे काम हो गए हमारे, है ना? अज़ीज़ बुज़ुर्गो दोस्तों, यहाँ ये जमा होना और कहना सुनना, वे अपने घर की राहत आराम को छुड़वा कर इस मैदान में पढ़ना, और गर्ज़ यही है कि अल्लाह का दीन हमारी ज़िंदगी में आ जाए। इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, चलाया है, अल्लाह ने इंसानों की बल्कि सारे जानदारों के लिए हवा और पानी के निज़ाम को चलाया है कि इसके बग़ैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। हवा के बग़ैर, पानी के बग़ैर, ये अल्लाह ने ये दो चीज़ें बनाई ज़िंदा रखने के लिए, है ना? और हम सब का तजुर्बा है, जानते हैं हम सब कि इसके बग़ैर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ मरतबा कोई एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, तो चोट आई है, पैर भी टूटा है और हाथ भी टूटा है, लेकिन पहले डॉक्टर देखते हैं कि उसको सांस मिल रहा है, ये सांस ले रहा है सहूलत से कि नहीं, अभी इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो पैर की यानी ट्रीटमेंट बाद में होगी, हाथ की बाद में होगी, पहले उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा कि अगर ये बचेगा तो हाथ पैर ठीक कर सकेंगे, अगर बचा ही नहीं तो पहले इसको सांस लेना इसके लिए आसान हो जाए। फिर कभी ऐसा होता है आदमी बीमार हुआ, उसको दस्त लग गए या फिर उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई, तो डॉक्टर्स पहले देखते हैं इसके बदन का पानी कम हो गया। अगर पानी कम नहीं हुआ है तो अभी डरने की बात नहीं, अभी खतरा नहीं है। पानी कम हो रहा है तो पहले पानी दो उसको, बोतल चढ़ाओ कि बदन का पानी कम ना हो जाए। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम है हर जानदार के लिए कि इसके बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही अल्लाह ने इंसानों की कामयाबी के लिए अपना मुबारक दीन उतारा है रोए ज़मीन पर कि इंसान दुनिया आखिरत में कामयाब होना चाहता है कि दीन शर्त है, बग़ैर दीन के कोई भी आज तक कामयाब नहीं हुआ और क़यामत तक होगा भी नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, अल्लाह ही ने दुनिया को चलाया है, तो अल्लाह ही का ये कानून है, अल्लाह का ये ज़ाबता है कि दीन के बग़ैर कोई भी कामयाब नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने पिछली कौमों के वाक़यात बयान किए हैं कुरान पाक में। इस उम्मत पर अल्लाह के बहुत एहसानात हैं, इस एहसान में एक एहसान ये भी है कि अल्लाह ने कुरान पाक जैसी किताब अता फरमाई और पिछली कौमों के वाक़यात बयान करके हमारे लिए साफ़ सुथरी रहबरी कर दी कि देखो पिछले ज़माने में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं, माल वाले भी, ताकत वाले भी, जत्थे वाले भी, है नहीं, समझ रखने वाले, होशियार, हाँ, सारी हर लाइन की कौमें गुजरी हैं। अल्लाह ने वाकयात बयान किए, खेती करने वाले भी गुजरे हैं, कौम सबा यानी खेती की लाइन की माहिर कौम थी, यानी एग्रीकल्चर की लाइन के एक्सपर्ट, हाँ, और ऐसी फिजा थी इनके इलाके में और ऐसी वो बाग लगाते, ऐसी खेतियाँ करती थी और आबो हवा और फिज़ा ऐसी ज़ोरदार थी कि अगर कोई बीमार आदमी उस इलाके में चला जाए तो वो सेहत याब हो जाए। हाँ, अगर कोई बीमार आदमी उनके इलाके में चला जाए तो वो भी तंदुरुस्त हो जाए, सेहत याब हो जाए। और उन्होंने अपने दो पहाड़ों के दरमियान, जैसे इस ज़माने में हम कहते हैं ना डैम, नदियों पर डैम बनाए जाते हैं, तो उस ज़माने में उन्होंने दो पहाड़ों के दरमियान में दीवार बनाकर पानी को जमा किया था, डैम बनाया था, और उस पानी से वो अपनी खेतियाँ और अपने बागात को सींचते थे, हाँ, खेतियाँ पकाते थे। और ये हालत थी इनके बागों की कि अगर कोई आदमी अपने सर पर खाली टोकरा लेकर यानी दाखिल हो जाए किनारे से, तो दूसरे किनारे बाग में से निकले उससे पहले वो टोकरा बगैर तोड़े हुए पके हुए फलों से भर जावे, ऐसे बागात। और उनको समझाने के लिए अल्लाह ने 13 नबी भेजे हैं, कि देखो कामयाबी इसमें नहीं है, तुम जो समझ रहे हो और जो महारत तुम्हारी है और जो तुम्हें हासिल है, यूँ समझ रहे हो कि ये कामयाबी है, कि ना इसमें नहीं है, कामयाबी तो दीन में है। हाँ, उनको इस बात को समझाने के लिए अल्लाह ने 13 नबी भेजे हैं। लेकिन बाज़ मरतबा होता है ना कि हर चीज़ का नशा होता है, बहुत सारे नशे हैं, उलमा हज़रात फरमा दें बहुत सारे नशे, नशे की बहुत सारी किस्में हैं। हाँ, उसमें एक नशा ऐसा भी होता है महारत का कि हम तो ये हैं, हम तो ऐसा कर सकते हैं, हमने ऐसा किया है। तो इनको समझाने के लिए 13 नबी भेजे, लेकिन बात नहीं मानी। तो जिस पानी से वो आबाद थे, जिस पानी से वो अपने बागात और अपनी खेतियां पकाते थे, अल्लाह ने उसी दीवार को तोड़ा और उसी पानी से पूरी कौम को बहा दिया और उनके निशान तक को बाकी नहीं रखा। हाँ, ऐसे बहुत सारे वाक़यात अल्लाह ने बयान किए और मेरे आपके लिए साफ सुथरी रहबरी कर दी कि देखो पिछले ज़माने में ऐसे ऐसे लोग आए हैं, लेकिन उसमें से कामयाब वही हुए जो जिन्होंने अल्लाह की बात मानी, नबी अलैहिस्सलाम की बात मानी, जो दीन पर चले वो कामयाब हुए। बाकी इसके अलावा के सब नाकाम हो गए। हाँ, कारोबार करने वाले थे, मार्केटों पर कब्जा रखने वाली कौम गुजरी है। ऐसा ज़बरदस्त उनका कमांड और कंट्रोल था मार्केटों पर कि वो चाहते तब तेज़ी और चाहते तब मंदी। हाँ, ऐसे थे, ऐसा कमांड था मार्केटों पर, ऐसा कब्ज़ा था इनका कि जिस वक्त चाहे उस वक्त तेज़ी और जिस वक्त चाहे वो मंदी। उलमा फरमाते अगर मट्टी को सोने के भाव में बिकवाना चाहते तो बिका देते। हाँ, तेज़ी अगर लाना चाहते तो ऐसी तेज़ी होती कि मिट्टी को सोने के दाम में बेच देते, और अगर डाउन करना चाहे तो कि सोने को मिट्टी के दाम में बेच दे। हाँ, ऐसा कब्ज़ा था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। तो ऐसा भारी कंट्रोल और कब्ज़ा होने के बावजूद ये नाकाम हो गए। ताकतवर कौम भी गुजरी हैं। हाँ, ऐसी ताकतवर कि जो अपनी ताकत के नशे में यूँ कहते थे, और अल्लाह पाक ने फरमाया है मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन। हाँ, लेकिन बात नहीं मानी तो कि वो भी नाकाम हो गए। हाँ, तो अल्लाह ने रहबरी फरमाई मेरे आपके लिए कि देखो पिछले ज़माने में ऐसे लोग गुजरे हैं, लेकिन कामयाब वही हुए जो दीन पर थे। तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, दीन हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, अल्लाह करिए समझ में आ जाए। खाना ज़रूरी समझा है, सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़ा, रात में हो सोने के वक्त में गर्म लिहाफ, इसकी ज़रूरत महसूस करता है तो आदमी अगर सफ़र में है नहीं है तो उसकी इंतज़ाम करता है कि नहीं मेरी ज़रूरत है, इसके बगैर कैसे चलेगा, है ना। हाँ, खाना पीना और जितनी बशरी ज़रूरत है इसको इंसान ज़रूरी समझता है। अगर इस इतने दर्जे में भी दीन की ज़रूरत को महसूस कर ले तो किसी की तश्कील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ, तश्कील की ज़रूरत, देखो सबकी ज़रूरतें हैं तो इसका इंतज़ाम किया नहीं किया, खाली मंडप नहीं बनाया या पिंडाल नहीं बनाया है, भाई इस तीनों की ज़रूरत है तो उसको रखा है, बैतुल खला को रखा है, खाने पीने का इंतज़ाम की ज़रूरत है, इसकी तश्कील होती है, खाना खाने के लिए तश्कील होती है, चाय की तश्कील होती है, इंसान को खुद को पता है ये मेरी ज़रूरत है, और उसको वक्त पर इसका एहसास होता है, फौरन उसको पूरा करने की कोशिश करता है। अगर इतने दर्जे में भी दीन की ज़रूरत को महसूस कर लें तो उसकी तश्कील की ज़रूरत नहीं आएगी कि भाई ये मेरी ज़रूरत है, इसके बगैर तो मैं न दुनिया में कामयाब हो सकता हूँ न आखिरत में। इसकी ये मेहनत है, ये इज्तिमात है, घर घर की मुलाकात है, अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये मेहनत है कि दीन हमारी ज़िंदगी में आवे। इसलिए फरमाते भाई तबलीग में निकल के क्या करना, या तबलीग में लग कर क्या करना, कि 6 सिफात हैं, 6 खूबियाँ हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में ले आओ, दीन पर चलना आसान हो जाएगा। सबसे पहली बुनियादी सिफत ईमान है, इसके ज़रिए से दिलों की यकीन को ठीक करना कि करता है तो अल्लाह ही करता है, करता धरता अल्लाह ही है, इलाह अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ना ला इलाह, इलाह का माने उलमा फरमाते हैं करता धरता, ला इलाह करता धरता कोई नहीं है। तो फिर सवाल होता है कि ये सारा सब कुछ कौन करता है, जब करता धरता कोई नहीं है तो दिन में से रात कौन लाता है, रात में से दिन कौन लाता है, मौसम को कौन बदलता है, हवाओं को कौन चलाता है, है ना, ये सारा सब कुछ फलों में यानी रस कौन भरता है, बहुत सारा निज़ाम कौन चलाता है, कि इसका जवाब है इल्लल्लाह, मगर एक अकेला अल्लाह, एक भी और अकेला भी, हाँ एक अकेला अल्लाह, कि अकेले होने की दलील है कि
पहली लाइन का बंद हो गई इतनी आवाज तो होता वहाँ होता पहले जा फोन लेते जा मेरा जा अब्दुल्ला अरे फोन लेते जा ले ले बंद कर दे अब्दुल्ला तो बैठूंगा माइक बंद हो गया
इसका ऐलान होता है तो वो बंदा ऐसा महबूब हो जाता है कि इंसान और चरिंदे और परिंदे और फरिश्ते सारे उससे मोहब्बत करते हैं। ये सबब है मोहब्बत का कि बंदा अल्लाह की इताअत पर आ गया, अल्लाह की फरमाबरदारी पर आ गया, तो ये सब सब के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दी गई। और ऐसा इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो जमीन का हिस्सा भी रोता है, उसके मोहल्ले की मुर्गी बिल्लियां कुत्ते भी रोते हैं, आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जहां से उसके आमाल ऊपर जाते थे और जहां से उसका रिस्क जमीन पर आता था। ये मतलूब है कि बंदा ऐसा महबूब बन जाता है। और जब आमाल बिगड़ते हैं, आंखों का देखना जब बिगड़ता है, कब बिगड़ता है? जब ये अल्लाह से गाफिल होता है नहीं? चोर चोरी कब करता है? जब जिसकी चोरी करने उसको गफलत में देखता है तब चोरी कर लेता है चोर, है नहीं? जब गाफिल होता है ना वो सामान वाला, तो जब गाफिल होता है तो चोर चोरी कर लेता है। हमसे भी नाफरमानी कब होती है? जब अल्लाह से गफलत होती है। जब बंदा अल्लाह से गाफिल होता है तो नाफरमानी हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं, है नहीं? इसलिए एक शेख थे, इनके मुरीदीन थे, उसमें से एक बंदा ऐसा एक गबी किस्म का, लेकिन शेख को उनसे बड़ी बड़ी मोहब्बत और बड़ा बड़ा लगाव था। तो दूसरे सारे थे शागिर्द, वो भी कहते हैं इसमें क्या देख लिया है हजरत ने कि उससे इतना सारा लगाव। हजरत के बाद पास बात पहुंची कि मामला ये हो रहा है, तो हजरत ने सबको कहा कि आज यानी हम आपको यानी एक परिंदा देते हैं, आप उसको ऐसी जगह पर जाओ जहाँ कोई ना देखे, उसको जबा करके लाओ। तो उस वो जो जो शागिर्द था, जो उनका मुरीद था, जिनसे शेख को बड़ी लगाव बड़ा लगाव था, उसको भी दिया। तो जो जिसको दिया, थोड़ी देर में कोई आया जबा करके ले आया, सारे जबा करके ले आए। शाम हो गई वो जिससे शेख को बहुत लगाव था वो जिंदा लेकर वापस आया, तो वो सारे हंसने लगे, हम तो पहले से ही कहते थे कि ये तो है ही गभी और गबू किस्म का, वो हजरत पता नहीं क्यों इससे इतना लगाव रखते हैं। तो जब सबने अपनी कारगुजारी सुनाई, मैं तो गया एकदम घने जंगल में, कोई नहीं देखा तो मैंने उसको ज़बह कर दिया, और मैं तो पहाड़ की जड़ में चला गया, और मैं तो वहाँ चला गया। सबने अपने अपने सब अपने परिंदे को ज़बह करके लाए, वो अपनी कारगुजारी सुना रहे हैं। शेख ने उससे भी पूछा, भाई आप तो ज़िंदा लेकर आए, क्यों ज़बह नहीं किया? कि मैं कहाँ करता, आपने तो कहा था जहाँ कोई ना देखे, मैं जहाँ गया वहाँ अल्लाह देख रहा था। मैं पहाड़ की जड़ में गया तो वहां भी अल्लाह देख रहा था, घने जंगल में गया तो वहां भी अल्लाह देख रहा था, हर जगह पर जहां गया आपने कहा था कोई ना देखे, लेकिन अल्लाह देख रहा था, मैं इसको कैसे ज़बह करता। यानी शेख दूसरे यानी शागिर्द ये दिखाना चाहते थे कि मतलब ये चीज़ है कि बंदे को अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए, जब अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाएगा ना तो ये नाफरमानी नहीं करेगा। हाँ, और जब नाफरमानी होती है, आंखों का देखना गलत होता है, जबान का बोलना गलत होता है, कानों का सुनना गलत होता है, हर एक अपना जायजा ले ले कि हमारी आँख क्या देखती है नहीं, हमारी जबान क्या बोलती है, हमारे कान क्या सुनते हैं। इसलिए देखो हमारी तनहाई या और कुछ ना सोचो, है नहीं, ये तो हम इज्तिमाही तौर पर बैठे ना इसलिए सारा सफेद नजर आता है, हमारी अपनी तनहाई या सोचो कि मेरी तनहाई में मैं क्या होता हूँ, मैं कैसा होता हूँ। ये तो लोग अभी सलाम वालेकुम हजरत दुआ करियो, है नहीं, दुआ में याद रख जो, ये सारा होता है, लेकिन तनहाई में सोचो तो सही, है नहीं। इसलिए बड़े बुजुर्ग ने एक बात लिखी हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, पड़ोस मुल्क में जब जाते थे तो असर के बाद का वक्त उनके मुसाफिर का मुलाकात का होता था, तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने देखा इस अल्लाह के बंदे को अजीब मकबूलियत अल्लाह ने दी है कि दुनिया का बड़े से बड़ा भी मुसाफिर की लाइन में खड़ा है, और दिन के एतबार से जो बड़ा है वो भी इनकी मुसाफिर की लाइन में खड़ा है, कि अल्लाह ने कितनी मकबूलियत दी है। लेकिन वो फरमाते हैं कि फिर हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह जब उससे फारिग होकर आते हैं हमारे पास, तो कहते हैं बेचारे मुसाफा करने आते हैं, अगर ये मेरी तनहाई देख लें तो मुझसे मुसाफा करना पसंद ना करें। यानी अपने आप को इतना कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो अल्लाह का फजल है, लेकिन अल्लाह महबूबियत डालता है। देखो ना ये हमारे अल्लाह वाले आते हैं लोग कितने मुसाफा के लिए, कि किसने डाला ये कि अल्लाह के नज़दीक ये महबूब हो गए, यानी अपने अमल की वजह से। और जब बंदे की यानी आँखों का देखना गलत होता है, जबान का बोलना गलत होता है, कानों का सुनना गलत होता है, और ऐसे अमल जब होते हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, वही हदीस पाक में अल्लाह फरमाते हैं हज़रत जिब्रील से कि जिब्रील फला बंदा जिससे मैं बुग्ज़ रखता हूँ, यानी मैं उससे दुश्मनी करता हूँ, मैं उससे मुझे 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 उससे उससे अदावत है, तुम भी उससे बुग्ज़ रखो, अल्लाह हुक्म देते हैं, तो जिब्रील इस्लाम उससे बुग्ज़ रखते हैं और सारे फरिश्तों का ऐलान कर देते हैं फला बंदा अल्लाह का नापसंदीदा है, तुम उससे अदावत रखो, तो सारे फरिश्ते अदावत रखते हैं, और फिर उसकी नफरत को और उसकी अदावत को सारी यानी मखलूक में डाल दिया जाता है, इनके दिलों में सारी नफरत डाल दी जाती है। तो खाली इंसान नहीं, दूसरे जानवर भी उससे नफरत करते हैं, ये है वजह नफरत की और ये है वजह मोहब्बत की। हाँ, इसलिए भाई ये सुबह और शाम का वक्त बहुत कीमती है कि फजर के बाद का वक्त, असर के बाद का वक्त, तीन तस्बीहात की पाबंदी करें, एक तो ये, दूसरा कुरान पाक की तिलावत करें, ये अल्लाह का बेहतरीन जिक्र है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह इसके ज़रिए हमसे बात करता है। हाँ, हमारा अल्लाह हमसे बात करता है। हज़रत अली की रिवायत है, इसका मफहूम है कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज की नीयत बांध लेता हूं। हदीस पाक में आता है ना कि नमाजी आदमी अल्लाह से बातें करता है, और सहाबा को अल्लाह से अल्लाह का लगाव था, तो अल्लाह से लगाव था तो कोई नमाज में खड़े होते तो कैसी लंबी नमाज होती थी, कैसी लंबी नमाज होती थी। एक सहाबी ने पहली रात निकाह हुआ है पहली रात, और बीवी से इजाज़त मांगी ईशा के बाद, मैं दो रकात पढ़ लूँ, कि हाँ ठीक है, इजाज़त दे दी, दो रकात पढ़ो, दो रकात में देर कितनी लगती है, हमारी दो रकात कितनी देर की, और हमारे तो शादी के वक्त में नमाज़ नहीं याद आती, पहली बात तो ये है नहीं, और ऐसे वक्त में लोग भी कहते हैं ना हमारा हमारा निकाह थे इलाज, तो ये निकाह हुआ तो क्या हो गया, तो दो रकात की इजाज़त मांगी। मेरी बात मैं तो अक्सर अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह करे मुझे भी समझ में आ जाए, हम सबको समझ में आ जाए, अल्लाह से लगाव और दोस्ती किसको कहते हैं और अल्लाह से मोहब्बत किसको कहते हैं। पहली रात की बीवी दो रकात की इजाज़त मांगी, कहा पढ़ लो, कहा पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, अब जो नमाज चल रही है चल रही है, फजर की अजान पर सलाम फेरा, वो याद भी नहीं आई, पहली रात की दुल्हन बैठी है इंतज़ार में और यहाँ दो रकात की नीयत बांधी, फजर की अजान पर सलाम फेरा है, सच बताओ कैसा मज़ा आता होगा। यानी हमारे भी होता है ना, एक फ़ोन आता है, हाँ हाँ ठीक है, तीसरे सेकंड में फ़ोन बंद हो गया कि कुछ काम नहीं, बस जितना काम था उतनी बात हो गई। और जब खास फ़ोन होते ना, रात में सब निकलते हैं ना बात करने के लिए, हाँ जमात में होते तो भी और हम लोग तो भी, तो कितनी लंबी बात होती है, फोन भी गर्म हो जाता है ना, कान भी गर्म हो जाते हैं, बैटरी भी डाउन हो जाती है और उसको पता तक नहीं चलता मैं बात करते करते कहाँ निकल गया। हाँ वो कितने तो गिर जाते हैं, उसको पता नहीं चलता मैं फोन करते करते कहाँ चला गया, कि ये क्या बात है कि जिससे बात कर रहा है ना वो बात कैसे, हूँ खादू हूँ रहिंदू, क्या हुआ कैसे हुआ, लगाव है ना, जिससे मोहब्बत होती है उससे बात लिमिटेड नहीं होती है। सहाबा को अल्लाह से मोहब्बत थी, बीवी है पहली रात की और अल्लाह अकबर नीयत बांधी, फजर पर सलाम फेरा। हमारी दो रकात कितनी देर की है, पता चलता है ताल्लुक कितना है, जैसे वो 2 सेकंड वाला फोन, हाँ ठीक है ना पहुंचा दो कट है ना, ये फर्क है कि अल्लाह से लगाव कितना, ये दलील है कि अल्लाह से मोहब्बत कितनी, कि नमाजी आदमी अल्लाह से बातें करता है, कि अल्लाह से लगाव नहीं है तो 2 रकात भी हमारी इतनी और 4 रकात भी इतनी है ना। हमने कहा कि हमारे आप मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, तो हमारा मौसा बोल हम ही नमाज पढ़ावे, और 5 मिनट की उसको लंबी लगती है। देखो ना तरावी साल में एक मरतबा मौका होता है कुरान को सुनने का, कि कुरान के जरिए अल्लाह हमसे बात कर रहा है, वो मौका होता है, तो हम कौन सी जगह नमाज पढ़ेंगे। सच बताओ दिल पर रख कर, जहाँ जल्दी होती है, जहाँ क्या होती है तरावी जल्दी जल्दी में 5 मिनट का फर्क होता है, ठीक है ना, त्याज जसू अपने सटासट गए नहीं आए नहीं गए नहीं आए नहीं, तरावी खत्म है ना। हाँ तो ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील है कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। तो जब आमाल बिगड़ते हैं तो हमारी नफरत का ऐलान कर दिया जाता है, सारी मखलूक नफरत करती है हमारी बहस और हमको सिंग मारती है फिर। इसीलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह की याद के लिए कुरान पाक की तिलावत बेहतरीन जिक्र है, फिर मौके महल की मसनून दुआएं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया है, किस मौके पर अल्लाह से क्या मांगना। और आखिरी बात अर्ज कर दें कि इस जिस मौके की जो मसनून दुआ है ना, वो उस वक्त का बहुत ताकतवर अमल है, बहुत, ये हमने आजमाया नहीं है, वरना जिस मौके की जो मसनून दुआ है वो उस मौके का बहुत ताकतवर अमल है। हाँ हज़रत मौलवी जैसे रहमतुल्लाह के पास लोग आते थे, हज़रत दम कर दो, तो फरमाया लिखा है बुजुर्गों ने सुना है कि उस मौके की जो दुआ होती ना वो पढ़कर हज़रत दम कर दे काम हो जाता था। हाँ कि उस मौके की जो मसनून दुआ होती ना वो पढ़कर दम कर दे काम हो जाता था, कि जो मौके की मसनून दुआ है ना वो उस वक्त की बहुत मकबूल है, इसलिए तो उसको मसनून और मकबूल दुआ कहते हैं, कि उस वक्त का वो सबसे ज़्यादा ताकतवर अमल है। तो मौके महल की दुआओं को सीखें, हमारे नबी हमें ऐसा छोड़ कर नहीं गए, दुआ वाला बना कर गए कि ये मौका है अल्लाह से ये मांगो, कुत्ता भोंक रहा है तो ये मांगो और मुर्गा बोल रहा है तो ये मांगो, सुबह हो रही है ये मांगो, शाम हो रही है तो ये मांगो, नया फल देख रहे ये मांगो, चांद को देखा ये मांगो, सूरज निकल रहा है ये मांगो, कोई मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन हमने ही छोड़ रखा है, हम जो परेशान है इस बात को छोड़ने की वजह से। नियत करो को अल्लाह को याद करेंगे, सुबह शाम की तस्बीहात का अहतमाम, कितना वक्त जाता है और फिर नफा हमारा ही है कि हमारे सारे काम बनेंगे, है ना। तस्बीहात फातिमी का अहतमाम करें, कुरान की तिलावत का कम से कम एक पारा रोजाना पढ़े, नहीं पढ़ सकते एक आधा पढ़े, आधा नहीं तो पाओ पारा, लेकिन अहतमाम से पढ़े, पढ़ना नहीं जानते सीखे उसको, सीखे हाँ सीखे, हमने सब सीख लिया, इसको ABCD जान यानी देखना नहीं आता पहचानना, वो मोबाइल चला रहा है आराम से सीख लिया। कंप्यूटर पहले दुकानों में नहीं थे, अब तो सब जगह कंप्यूटर, बिल भी उस पर आ गए सारा सब कुछ, तो मजबूरन कंप्यूटर सीखा बुढ़ापे की हालत में, लेकिन कुरान हमने नहीं सीखा। हमारे सूरत में एक बड़े मियाँ 3 दिन गए और 3 दिन में देखे हल्के में बैठे, तो पता चला कि यार हमारा कुरान का तो ये हाल है। 3 दिन के बाद आए मदरसे में, गए जिस मदरसे में पोता पढ़ता था, दादा साथ में बैठे और तख्ती लेकर बैठे और उस्ताद से कहा जो गलती में बच्चों को आप सजा देते हैं ना वैसी ही सजा मुझे भी दी जाएगी। एहसास हुआ कि मेरे कुरान में इतनी कमी मुख्तसर में, कि फिर वो दादा और पोता साथ में हाफिज बने हैं और दादा और पोता दोनों ने साथ में तरावी पढ़ाई है और उस दादे का सजदे की हालत में इंतकाल हुआ है। हमें कुरान से लगाव नहीं इसलिए कि वो जो सीखे थे वही अभी चल रहा है। पूछो मौलाना से कभी बैठो सामने तो पता चले कि सूरह फातिहा में कितनी गलतियां हैं। इसलिए कुरान को सीखे, नहीं पढ़ना जानते सीखे, इतना वक्त फारिग करके मौके महल की दुआओं को और तन्हाइयों में फिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। सारी फरियादें अगर करनी है जितनी जो कुछ वो अल्लाह से करें, इससे अल्लाह की याद हमारे अंदर पैदा होगी। करोगे भाई? अब देखो वक्त है फारिग होने का, जिनके अभी फारिग होने की ज़रूरत नहीं है वो तो जेब से तस्बीह निकालें अपनी तस्बीह को पूरा करें, और ज़रूरत है जल्दी से फारिग होकर आ जाएं। फिर हम आए हैं यहाँ आमाल के लिए आए हैं, इज्तिमा आमालों का नाम है, मेहनत का नाम है, जल्दी से फारिग होकर फिर अपने आमाल में शरीक। सिफात दे रखे हैं या हमें जो इख्तियारात दे रखे हैं वो तो महदूद हैं, कि हम थोड़ी मुद्दत तक देख सकते हैं, थोड़ी दूर तक, इसके आगे कि इसके आगे पता नहीं कोई है खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन कौन है कि पता नहीं है। देखना हमारा महदूद है, सामने देख सकते हैं तो पीछे नहीं देख सकते, दाएं देख सकते हैं तो बाएं नहीं देख सकते। हमारा देखने की ताकत तो दी है लेकिन महदूद है, सुनने की ताकत महदूद है, यानी समझने की ताकत महदूद है, हमारी अकल महदूद है। वो सारी सिफात में अल्लाह कामिल है, सुनने में ऐसा कामिल है कि सारी मखलूक एक साथ जमा हो जाए, यानी इंसान नहीं सिर्फ, हमारे तो इंसानों में भी कितनी ज़बानें हैं, खाली गुजराती पकड़ो तब भी कितनी ज़बानें बदल जाती हैं। गुजराती ही सही, लेकिन ज़िला बदलेगा इसका लहजा बदल जाएगा, ज़िला बदलेगा तो है नहीं लहजा बदल जाएगा और वो समझना मुश्किल हो जाएगा। दो लहजों वाला अगर इस साथ में बोले तो चाहे गुजराती बोल रहे हैं फिर भी हम नहीं सुन पाएंगे, और सुन भी नहीं पाएंगे समझ भी नहीं पाएंगे। फिर अगर स्टेट बदल गए, ज़बानें बदल गई, फिर मुल्क बदला दो कितनी ज़बानें है नहीं, फिर दूसरी मखलूक है नहीं जानदार वो सारे अगर जमा हो जाए तो फरमाया वो सारी मखलूक एक साथ जमा हो जावे और एक साथ बोलना शुरू करें अपनी अपनी ज़बान में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने में ऐसा ज़बरदस्त है कि वो सारी बातों को एक वक्त सुनता और समझता है, एक वक्त सुनता भी है और समझता भी है। हाँ, तो मेरा आपका रब ऐसा ज़बरदस्त है, लेकिन चूंकि हमने पहचाना नहीं है, इसलिए इल्म के ज़रिए से अल्लाह को पहचाना, बग़ैर इल्म के आदमी अल्लाह को नहीं पहचान सकता, बेइल्म नातवा खुदारा शनाख्त, और बग़ैर इल्म के आदमी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, और फरमाया उस अल्लाह का जो हक है हम पर कि अल्लाह की मानो, सारे हकूक अल्लाह के हम पर है, यानी उसी ने पैदा किया, उसी ने सारा जिस्म अता फरमाया, सारे आज़ा उसी ने अता फरमाए, आँख उसी ने दी, ज़बान उसी ने दी, कान हाथ और पैर, बल्कि एक एक उज्व उसी का अता किया हुआ है, ये जिस्म हमारा नहीं है। इसे उलमा से पूछो, ये जिस्म को बिगाड़ने का हमको कोई हक नहीं है, बहुत तशरीह तफसीर के साथ फरमाते हैं कि देखें खाना, हमारा जो खाना होता है ना, ये खाना भी ज़रा ढंग का हो और सही हो, क्योंकि यानी इधर उधर का खाना हमारे जिस्म में उतारना ये भी हमारा हक नहीं है, सेहत भी अल्लाह की अमानत है, उसको बिगाड़ने का हमें कोई हक नहीं है। पूछो उलमा से, उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, ये जिस्म अल्लाह का है, हमारा नहीं, अमानत है अल्लाह की। तो भाई ये गफलत दूर होए इसके लिए अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, कि अल्लाह को याद करना इतना कि अल्लाह हमें याद रह जाए, अल्लाह को याद करना इतना याद करना कि अल्लाह याद करते करते अल्लाह हमें याद रह जाए। हाँ, अल्लाह याद रह जाए, और जब अल्लाह याद रह जाएगा गफलत दूर हो जाएगी, तो हर आन बंदा अल्लाह की नाफरमानी करने से रुकेगा, बचेगा, कि अल्लाह का ध्यान उसको हो जाएगा कि मेरा अल्लाह देख रहा है, हर जगह देखता है और मेरी हर हरकत से वाकिफ है। हाँ, मेरे हर हरकत से वो वाकिफ है, मेरे हर अमल को वो जानता है। हाँ, मैं दिल में जो सोचता हूँ उसको भी जानता है, बल्कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं तो तुम्हारी सहरख से भी ज़्यादा करीब हूँ, सबसे ज़्यादा हमारे से अल्लाह करीब है। हाँ, और जब अल्लाह बंदा अल्लाह को याद करता उस वक्त, तो अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जब बंदा मुझे याद करता है और उसके होंठ मेरी याद में हरकत करते हैं, मैं उसके साथ होता हूँ, अल्लाह हमारे साथ होता है। और फिर अल्लाह के कितने एहसान हम पर हैं, कितने एहसान हम पर हैं, सबसे ज़्यादा एहसानात अल्लाह के हैं, और सबसे ज़्यादा हमारा खैरखा भी अल्लाह ही है, सबसे ज़्यादा हमारा भला चाहने वाला भी अल्लाह ही है, अल्लाह से ज़्यादा हमारा हमदर्द कोई नहीं और हमारा भला चाहने वाला कोई नहीं है ना। हाँ, इसलिए तो अल्लाह ने मौसम बदला तो फल बदल दिए, मौसम बदला ने तो फल भी बदल दिए। हाँ, मौसम बदलता है फल बदल जाते हैं, अल्लाह जानता है मेरे बंदों की ये ज़रूरत है, इस मौसम में ये फल की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो सर्दी का मौसम आया फल वैसे हो गए, गर्मी का मौसम आता है तो फिर वैसे ही फल अल्लाह ने लिया है मार्केट में, है ना। ये गर्मी के मौसम में फलों में पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, तो खरबूजा आ गया, तरबूज आ गए, है ना। हाँ, कि जिसमें पानी ज़्यादा है, कि गर्मी के मौसम में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अल्लाह ने वैसे फल ले आया। हाँ, तो सबसे ज़्यादा हमारा भला चाहने वाला हमारा अल्लाह है, उसी अल्लाह ने दीन उतारा है कि मेरे बंदे कामयाब हो जाए। हाँ, मेरे बंदे दुनिया में दुनियावी एतबार से राहत पाएँ और आखिरत में हमेशा के लिए कामयाब हो जाए। जन्नत में कौन रहेगा, है नहीं, हमारे लिए तो बना ही अल्लाह ने। हाँ, बाकी अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं होता अगर कोई नमाज ना पढ़े, अगर कोई अल्लाह की इताअत ना करें, तो इताअत करने वाले तो बहुत सारे हैं उसके, ہے نہیں، سارے فرشتے اللہ کی اطاعت میں ہیں، رکو کرنے والے بھی ہیں، سجدہ کرنے والے بھی ہیں، کہ جب سے پیدا کیا ہے تب سے رکو میں ہی ہے. ہاں بعض فرشتے ہیں جب سے ہیں تب سے سجدے میں ہیں، قیام والے قیام میں ہی ہیں اور قیامت تک اسی میں رہیں گے، ہاں قاعدے والے قاعدے میں ہیں. لیکن بھائی دوستو بزرگو، اللہ نے میرے آپ کے لیے، میرے آپ کی بھلائی کے لیے، میری آپ کی کامیابی کے لیے دین اتارا ہے. دین کیا ہے؟ دین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. ہاں زندگی کیسے گزارنی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزار کر ہمارے لیے سیمپل اور نمونہ پیش کر دیا کہ ایسے گزارو، صبح ایسے کرو، شام ایسے کرو، کاروبار ایسے کرو، خریدنا ایسے، بیچنا ایسے، کھانا ایسے، پینا ایسے، چلنا ایسے. ہاں یہاں تک کہ یہود صحابہ کو تانا دیتے تھے کہ ہم نے سنا ہے تمہارے نبی تمہیں پیشاب پاخانہ کرنا، میں تو یعنی تھوڑے یہ صاف جملے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ تو کہتے تمہیں ہگنا موتنا سکھاتے ہیں. تو صحابہ یوں عرض کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا، ہمارے نبی نے سکھایا ہے. تھوکنے کا طریقہ بھی ہے، کیسے تھوکنا، ہاں تھوکنے کا طریقہ بھی ہے، ہاں استنجا بیت الخلاء کا طریقہ بھی ہے، کھانے کا طریقہ بھی، کیسے کھانا، پانی کیسے پینا، کسی سے بات کیسے کرنا، ہاں کسی سے بات کیسے کرنا، ہمیں معلوم نہیں ہے. مسئلہ ہمارا یہاں اٹکا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس نبی کے طریقے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہاں پانی کیسے پینا ہمیں معلوم نہیں ہے. ہاں یہ ہماری سب سے بڑی کم نصیبی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کا طریقہ معلوم نہیں. پریشانی کی وجہ بھی یہی ہے. ایک ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں نا، طب نبوی ایک کتاب ہے، عربی اب تو اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، اردو میں بھی اب تو گجراتی میں بھی ملتی ہے، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری مبارک زندگی میں کیا کھایا، کس وقت کھایا، کس چیز کو کس کے ساتھ کھایا، کیا ترتیب تھی کھانے پینے کی، وہ سارا اس میں جمع کیا ہے. ڈاکٹروں کا یوں کہنا ہے کوئی اگر اس پر عمل کر لے، چارٹ ہے پورا، چارٹ لکھا ہے اس میں، اس چارٹ پر اگر کوئی آدمی عمل کر لیں تو موت کے سوا کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، موت کے سوا یہ کبھی بیمار نہیں پڑے گا. ہاں اب ہماری وجہ کیا ہے بیماریوں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کس وقت کھانا، کیا کھانا، یعنی کون سی غذا کھانی ہے، کب سونا، کب اٹھنا، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے. ہاں بڑی بیماری ہماری رات میں دیر سے سونے کی، پوچھو ماہرین سے، دیر سے سونا یہ نقصان ہے صحت کے حساب سے، بہت سارے نقصانات اس کے. ہم کہتے ہیں لیٹ اٹھتے نہیں، رات میں مولانا اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کل کہ آدمی لیٹ اٹھتا نہیں ہے، لیٹ سوتا ہے. ہاں لیٹ اٹھتا نہیں، لیٹ سوتا ہے، لیٹ سوتا ہے تو پھر لیٹ اٹھتا ہے. ہاں کہ ہم نے اپنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو طریقہ ہمیں دے کر گئے ہم اس سے ہٹ گئے، ہماری زندگی اس سے ہٹ گئی، نتیجے میں ہمیں یعنی ہم راحت کی بجائے تکلیفوں کے شکار ہو گئے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پاکیزہ طریقہ دے کر گئے کہ کبھی پریشانی نہیں آوے، یعنی ہاں کبھی ناکامی نہیں آوے گی، کہ اللہ پاک نے اس کو مقبول کر دیا یعنی، اور قیامت تک کے لیے اس پر قبولیت کی مہر لگا دی قیامت تک. اسی لیے بھائی دوستو بزرگو، اللہ کے حق کو پہچاننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچاننا اور اس حق کو یاد رکھنا اور اس حق کو ادا کرنا، اس کا نام ہے ذکر. اور وہ یاد رہیں اور غفلت ہماری دور ہو جاوے، اس لیے کہتے ہیں ہم اللہ کو یاد کریں، اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس کی عادت ہماری بن جائے. اس لیے کہتے ہیں فجر کے بعد کا وقت اور عصر کے بعد کا وقت یہ اللہ کی یاد کے لیے خاص قرار دیا. ہاں کہ ان دو وقتوں میں فرشتوں کی یعنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، کہ فجر کے بعد جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے بعد چلے جاتے ہیں، اور عصر کے بعد جو فرشتے آتے ہیں وہ فجر کے بعد چلے جاتے ہیں. اگر ان دو وقتوں میں بندہ اللہ کی یاد میں اگر مشغول رہتا ہے، ہاں عموماً یعنی جو مشائخ ہیں وہ بھی تلقین کرتے ہیں ان دو وقتوں میں اللہ کو یاد کرنے کو، اور حدیث پاک میں بڑے فضائل آئے اس کے، تاکید آئی ہے، بلکہ خود اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا. اس کے خلاصے میں علماء فرماتے ہیں کہ درمیانی حصے میں تیرے کاموں کو بنا دوں گا. بولو کام کرنا، بنانا بگڑنا کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے، کہ ہمارے کام کا بننا بھی اور بگڑنا بھی یہ اللہ کے قبضے میں ہے. ہاں اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے کاموں کو بناؤں گا، کہ اس کی اسکیم کیا ہے، نسخہ کیا ہے، کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو. اس کے لیے ہمارے بزرگان کیا فرماتے ہیں، صبح و شام تین تسبیح پڑھو، تیسرا کلمہ، درود پاک اور استغفار. کتنی دیر ہوتی ہے کہ 15 منٹ مشکل سے ہوتی ہے کہ قبلہ رخ بیٹھ جاؤ اور دھیان یعنی جمع کر یہ 3 تسبیح پوری کر لو. کیا ملے گا اس پر؟ اوہو اتنے سارے فضائل ہیں کہ جو فجر کے بعد آئیں گے فرشتے وہ بھی آنے والے ہمارا شمار اس میں اپنا رپورٹ شروع کریں گے لکھنے کا. جو فجر کے بعد آئیں گے وہ لکھیں گے یہ اللہ کی یاد میں ہے, اور جو فجر کے بعد جانے والے ہیں وہ اپنا رپورٹ کلوز کریں گے آج کا, وہ بھی جاتے جاتے لکھیں گے کہ یہ اللہ کی یاد میں ہے. آنے والا بھی اللہ کی یاد میں لکھ رہا ہے, جانے والا بھی اللہ کی یاد میں لکھ رہا ہے. آنے جانے والے دونوں لکھ رہے ہیں کہ ہم گئے تب بھی اللہ کی یاد میں مشغول تھا, ہم آئے تب بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے. گویا پورا وقت اللہ کی یاد میں شمار ہو جاتا ہے. اور کیا کہ اللہ درمیانی کاموں میں درمیانی اوقات میں ہمارے کاموں کو بنائے گا. کر کے دیکھو, یعنی کچھ دن کر کے دیکھو, دیکھو کام کیسے بنتے ہیں, کام کیسے بنتے ہیں. اور بھائی دوستو بزرگوں, تسبیحات کی پابندی سے دوسرے بڑے بڑے کام جو بڑے بڑے اعمال ہیں اس پر اللہ پاک قدرت دے دیتا ہے. بڑے بڑے کاموں کو دیکھو نا, تسبیحات فاطمی اس کا نام ہی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات تلقین کی, تعلیم دی اس کی, کہ ایک بار آئی بیٹی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بلکہ وہ خود نہیں بول سکی, اللہ حضرت علی نے ان کی سفارش کی کہ پانی کی یعنی مشکیزہ اٹھا کر لاتے ہیں اور اس کی رسی جو ہوتی ہے یہاں اس کی وجہ سے بدن پر رسی کی رگڑ کے نشان ہو گئے. گھر میں چکی چلاتی ہیں, کون ہے؟ دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہے. کوئی پرنسس اس کے درجے پر ان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی, کوئی شہزادی وہ درجے کو نہیں پہنچ سکتی. ان کی یہ مشغلے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہیں, ہاتھوں میں اس کے گجراتی میں کہتے ہیں آٹن, ہاں نشان ہو گئے. ہاں خود جھاڑو دیتی ہیں, اور اس کو ایسے فرش اور ماربل تو تھے نہیں, کچی فرش ہوتی تھی. تو فرمایا کہ پھر جھاڑو دینے میں, کیونکہ جھاڑو خود دیتی ہے کپڑے میلے رہتے ہیں, چولہا جلانا پڑتا ہے کپڑے کالے رہتے ہیں, یہ ساری باتیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یعنی غلام باندھی آئی تھی, حضرت علی نے کہا کہ ایک آپ بھی مانگ لو خادم آپ کے ابو جان سے, لیکن وہ تو بول نہیں سکی, اپنے ابا جان سے کہتے ہوئے بھی شرم آئی, مزاج شرم میں اتنی زیادہ. تو حضرت علی نے ہی سفارش کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی ہے نا, میں اس سے اچھا غلام سے بھی اچھی چیز بتاؤں. اس کا مفہوم ہے کہ جب سونے کے لیے لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو, یہ غلام اور خادم سے بہتر چیز ہے. پھر آگے تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہو گئی 33 33 34, تینوں کا جمع کر دو 100 ہو جاتے ہیں, اور کم سے کم ایک نیکی کا بدلہ اللہ کی طرف سے 10 کا ہے. تو 100 مرتبہ ہو گیا تو نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 1000 نیکیاں, 1000 نیکیاں ہو گئی. 2 منٹ میں 1000 نیکیاں, 2 منٹ میں اتنے گناہ کسی کے نہیں ہوتے کہ 1000 نیکیاں ہو گئی. یہ تو آخرت کے اعتبار سے نفع ہوا. پھر فرمایا کہ تم اس کو دم کر لو اپنے بدن پر, تو دن بھر میں جو کام کاج میں قوت خرچ ہوئی ہے تو وہ قوت اللہ واپس لوٹاتا ہے, اور دوسرا جو تھکان ہو رہی ہے وہ تھکان بھی دور ہو جائے گی. اور غلام یہ نہیں کر سکتا, غلام یہ نہیں کر سکتا, جسمانی طاقت اور فرمایا اور آخرت کا نفع ہر عمل میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیمات میں دونوں نفع ہیں, دنیاوی بھی اخروی بھی, لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں ہے. ہاں اس کو کر کے دیکھیں, اس کو کر کے دیکھیں, اس کو دیکھ کر کرنے کی بات نہیں ہے, یہ دین کر کے دیکھنے کی چیز ہے. دیکھ کر کرنے کی بات دنیا میں ہوتا ایسا کہ دیکھ کر کرو, یہاں تو کر کے دیکھو اور یقین کے ساتھ. ہاں یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ ایسا ہی ہوگا. ہم میں اور حضرات صحابہ میں سب سے بڑا فرق یقین کا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسا یقین کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دی ہے کہ ایسا ہی ہوگا, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہاں اور ہمارا معاملہ کیسا ہے, چلو کر دیکھو تو صحیح, ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے نہیں, ہم اخطرے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ہاں اللہ کی ذات آزمانے کے لیے نہیں ہے, اخطرہ کرنے کے لیے نہیں ہے, اللہ کی ذات یقین کرنے کے لیے ہے. اور اللہ کا وعدہ یقین والوں کے لیے ہی پورا ہوتا ہے. جو بندہ یقین کر لیتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بھروسے کو یعنی ہاں ناکام نہیں کرتے. اس لیے حدیث قدسی میں ہے, علماء فرماتے ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ کسی کام میں مجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ میرا کام تو اللہ بنائے گا یا میرا کام تو اللہ کرے گا, تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اس بندے کو میرے غیر کے حوالے کرتے ہوئے شرم آتی ہے. جب اس نے مجھ پر بھروسہ کیا کیسے میں اس کو میرے گھر کے حوالے کروں؟ تو مسئلہ آتا ہے یقین کا. ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو کر کے تو دیکھیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں جتنے وظائف امت اس وقت میں پڑھتی ہے نا اتنے کسی زمانے میں وظائف نہیں پڑھے گئے. لیکن مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ یقین کا مسئلہ اٹکا ہے. کہ حضرات صحابہ تھوڑے تھے, ہمارے زمانے ابھی حج کتنے ہوتے ہیں حاجی ہر سال؟ لاکھوں میں ہوتے ہیں. کیسے؟ لاکھوں میں. اور پورا سال عمرہ والے تو الگ ہے نا. ہاں, اور نمازی کتنے؟ سمجھو 600 کروڑ انسان دنیا میں ہیں, 200 کروڑ ایمان والے ہیں. اس میں سے اگر 1% بھی نمازی گن لو, 1% نمازی گنو, الحمدللہ اس سے زیادہ ہوں گے. اپنے 1% پکڑتے ہیں کہ 1% نمازی ہیں, تو ابھی کتنے ہوں گے؟ 2 کروڑ تو ہوں گے. 1% اگر نمازی پکڑو تو 200 کروڑ میں سے 1% پکڑو تو 2 کروڑ تو نمازی ہوں گے. صحابہ آخر زمانے میں 1.25 لاکھ تھے. حضرات صحابہ حجت الوداع میں بھی 1.25 لاکھ اور نماز میں بھی آخر زمانے میں 1.25 لاکھ ہے. یہاں تو 1% پکڑو تب بھی 2 کروڑ ہے. تو نمازی بھی زیادہ ہیں, حاجی بھی زیادہ ہیں. یعنی حاجی لاکھوں میں ہیں, 50 لاکھ, کوئی کہتا ہے 50 لاکھ تھے, کوئی کہتا ہے 30 لاکھ تھے, جو بھی آنکڑا ہو. لیکن صحابہ حجت الوداع میں حضور کے ساتھ ہی جب 1.25 لاکھ تھے, اور یہاں تو 30 لاکھ 35 لاکھ کی بات چلتی ہے. یعنی زکوٰۃ اس سے بھی زیادہ. فرق کیوں ہے؟ پھر مسئلہ امت کا حل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہ وہاں یقین پر آ کر بات اٹکتی ہے. کہ صحابہ یقین کے ساتھ کام عمل کرتے تھے. ہم ذرا سسو پنج میں ہیں, ہوگا کہ نہیں ہوگا, چلو کرو تو صحیح, ہوتا کہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم میں سے بہت سارے صلاۃ الحاجت بھی پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے. لیکن مولانا یونس صاحب دوریا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی صلاۃ الحاجت کی ترتیب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آوے, حاجت آوے, تو فرمایا 2 رکعت پڑھو, پھر پڑھو, پھر پڑھو. کیونکہ صلاۃ الحاجت کہاں تک پڑھنی؟ کہ جب تک کہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے. یہ اس کی ترتیب ہے. پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ابھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, سمجھو کہ تربیت ہو رہی ہے, پروسیس چل رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ پروسیس چل رہی ہے, تربیت ہو رہی ہے. اور مسئلہ حل ہو گیا تو کہ سمجھو ترتیب بن گئی آپ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, امی عائشہ کے پاس آئے, وہ کہا کہ بھوک لگ رہی ہے, کھانا کچھ؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے. 2 رکعت پڑھی, پھر آئے کہ کچھ ہوا کہ نہیں ہے. 4 مرتبہ ہوا. اب بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کوئی کمی رہتی ہوگی؟ یعنی جو نماز خود لے کر آئے ہیں, ان کی نماز میں کوئی کسر ہوگی یا کوئی کمی ہوگی؟ لیکن امت کی تعلیم کے لیے, ہاں, خود نے 4 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے, 4 مرتبہ 2 رکعت پڑھی. 4th مرتبہ میں آئے تو کہا کہ ہاں کھانا موجود ہے. کہ کیسے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تھے اور گوشت اور روٹی دونوں دے گئے, کہ آئندہ بھی مجھے اطلاع کر دیں. اس وقت کا بھی مسئلہ حل ہوا, آئندہ کے لیے بھی حل کروا گئے. تو یہ نماز, اس لیے فرمایا نماز وہ سبب ہے اور نماز وہ ہتھیار ہے کہ جہاں جا کر دنیا کے سارے راستے اٹک جاتے ہیں, سارے راستے اٹک جاتے ہیں, ساری طاقتیں اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. نماز کا کام تو وہاں سے شروع ہوتا ہے, نماز تو وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ہاں, لیکن یقین نہیں ہے. اس لیے ہمارا حال کیسا ہے بتائیں؟ کہ مسجد میں ہے اور رنگ بجی تو کہاں جائیں گے؟ باہر. حالانکہ مسئلے حل کرنے کی جگہ پر تو کھڑا ہے, لیکن کہاں جاتا ہے؟ باہر. اور فون آ گیا تو کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے, ہے نا. ہاں, 1.25 والی میں نہیں ملی تو 1.5 میں پڑھ لیں گے. ہمارا حال یہ ہے. اس لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے, اگر مسلمان کو مسجد میں آنا آ جائے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ محنت اسی کی ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں, اللہ کے گھر سے جڑ جائیں. اللہ سے جڑنا اس کی دلیل ہے, اللہ کے گھر سے جڑو. اور اللہ سے لینے کا اور اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا, اپنے کاموں کو بھروانے کا راستہ اعمال والا ہے. ان اعمالوں پر آنے کے لیے اللہ کی یاد ہے کہ ان اعمالوں پر ہمیں استقامت ملے, ہمارے قدم جمے. اس کے لیے اللہ کی یاد ہے, اللہ کے ذکر سے ہمارے لیے دین پر استقامت ملے گی. ہمیں دین پر استقامت اللہ کے ذکر سے ملے گی, اللہ کی یاد سے. جتنا اہتمام ہوگا نا, جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے کام جو مشکل نظر آتے ہیں اللہ کے ذکر کی برکت سے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. ہاں, وہ طاقت اللہ دے دیں گے, استقامت ہمیں ملے گی دین پر. اس لیے صبح و شام کی یاد ہے, اللہ کی یاد, 3 تسبیحات کی پابندی کرنا عام لوگوں کے لیے. ہاں, کہ ذکر کو اپنی زندگی میں لانا ہے, کہ اس کی محنت یہ ہے کہ لوگوں میں ایک تو اللہ کی یاد کی خوب بات کرو, اللہ کے صفات کو خوب بولو. یعنی اللہ کرتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے. اور اس وقت میں خاص کر کے لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ سے امیدیں دلاؤں, کہ اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بڑی طاقت والا ہے اور اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اللہ سے امیدیں بندھاؤ, لوگوں کو امیدیں دلاؤ, اور واقعی میں اللہ پاک کرنے ہی والا ہے, اللہ اچھے حال لانے ہی والا ہے. کہ گرمی آئی ہے تو کیا آپ یعنی چھاؤں آنے والی ہے, دھوپ آئی ہے کہ چھاؤں آنے والی ہے. ہاں, اس بات کو صحابہ یقین کرتے تھے کہ اب حالات آئے ہیں کہ اب راحت آنے والی ہے. ہاں, اس کو یقین کرتے تھے کہ تکلیف آئی ہے تو کیا اب راحت آنے والی ہے, پکی بات ہے. تو اللہ سے جڑنا, اللہ کی یاد سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, پھر اللہ کا بن جاتا ہے. یعنی کہ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے, اللہ کی یاد سے, اللہ کی اطاعت سے بندہ اللہ کا بن جاتا ہے. اللہ فرق فرما دے کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے, پھر اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے. یعنی گویا اس کے اعضا, بندے کے اعضا اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں, کہ اس کے اعضا سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی. پھر یہاں غلط نہیں دیکھے گی, پھر یہ زبان غلط نہیں بولے گی. ہاں, اور جب یہ بندے کے اعضا ایسے ہو جائیں گے نا, تو بندہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جاتا ہے. فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے لکھا ہے نا کہ جب بندے کے یعنی اعمال اللہ کی رضا والے ہو جاتے ہیں, یعنی زبان اور کان اور آنکھ اور ہاتھ اور پیر, ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل فلاں بندہ میرا محبوب ہے, میں اس سے دوستی کرتا ہوں, میں اس سے پیار کرتا ہوں, وہ میرا محبوب ہے, لہذا تم بھی ان سے دوستی کرو, تم بھی اس سے محبت کرو. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے حضرت جبریل سے. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور تمام فرشتوں میں اس کا اعلان کر دیتے ہیں, آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ